तृतीय अध्याय आधुनिक हिंदी लेखिकाएं रचना दृष्टि पृष्ठ संख्या 26। आधुनिक हिंदी लेखिकाओं के लिए रचना की चुनौतियां कुछ अलग प्रकार की रही हैं। रचना दृष्टि का मूल संबंध जीवन शैली से व जीवन दृष्टि से होता है, इसीलिए रचनाकार की अपनी वर्गीय स्थिति या सामाजिक परिवेश का भी अपना महत्व होता है। यद्यपि दृष्टि संपन्न रचनाकार चाहे जिस वर्ग का हो, जीवन की जड़ता या ठहराव से संघर्ष का मोर्चा चुन ही लेता है, किंतु लेखिकाओं के लेखन में इस दृष्टि संपन्नता की दखल उतनी नहीं दिखाई देती। वे ज्यादातर निजी अनुभवों, संवेदनाओं या कल्पनाओं के ग्लैमर से आक्रांत दिखाई देती है। मृदुला गर्ग या मृणाल पांडे जैसी प्रखर लेखिकाओं के जीवन पर भी इन चीजों का असर दिखाई देता है। उषा प्रियंवदा और शिवानी के लेखन पर इसकी पकड़ ज्यादा है। मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती और ममता कालिया के उपन्यासों में प्रगतिशील रचना दृष्टि के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण संघर्ष दिखाई देता है। उनके उपन्यासों का कथ्य, उनके चरित्र, उनके विचार व उनके रचना संकल्प मनुष्य के जीवन के अभाव से संघर्ष करते हैं और उनके पीछे जीवन को पूर्णता और सकारात्मकता में रचने की दृढ़ इच्छा दिखाई देती है। ये उपन्यास ज्यादातर जीवन की जड़ और रुग्ण स्थितियों या मनोवृत्तियों का विरोध करते दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी ओर मृदुला गर्ग या उषा प्रेमवदा के बौद्धिक प्रखर या संवेदनशील चरित्र भी असह्य जीवन स्थितियों या मूल्यों से समझौता करके रह जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। उषा प्रियंवदा ने 55 खंभे लाल दीवारे, रुकोगी नहीं राधिका जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। गहरी भावुकता लिए हुए इन उपन्यासों का मुख्य भाव पराजय है। केंद्र में अनिवार्यतः स्त्री चरित्र है। निम्न मध्यवर्गीय परिवेशों की आर्थिक जकड़न में छोटी सी स्वतंत्रता की आकांक्षा लिए छटपटाते स्त्री चरित्र। पैराग्राफ चेंज। 55 खंभे लाल दीवारे में एक शिक्षित नारी जो कि अपने परिवेश व मजबूरियों के आगे अपनी आकांक्षाओं का गला घोटती है। वह शिक्षित व आत्मनिर्भर सुषमा है, किंतु उसके ऊपर अपने छोटे भाई बहन, रिटायर पिता व माता है, जिनके खाने पीने व अन्य सारी जिम्मेदारी सुषमा नामक युवती पर ही है और इन्हीं जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वह अपने प्रेम का गला घोट देती है। इस प्रकार इस उपन्यास की रचना के लिए उषा प्रियंवदा ने एक नारी की विषम परिस्थितियों को उजागर करने की दृष्टि से रचना की है। यह वही नारी है जो विद्रोह का नहीं अपितु समझौते का विकल्प चुनती है। पैराग्राफ चेंज। पृष्ठ संख्या 27। रुकोगी नहीं राधिका में भी उषा प्रियंवदा ने स्वतंत्रता के लिए छटपटाती नारी के रूप को उभारने की कोशिश की है। राधिका अपने पिता के पुनर्विवाह करने पर उनसे नाराज होकर घर छोड़ती है, विदेश जाती है, किंतु पुनः लौटकर अपने पिता के पास आती है। उसे डैन, अक्षय, मनीष तीनों मिलते हैं, फिर भी उसे उसका चैन नहीं मिलता। उसकी सौतेली माँ अपनी बेटी के कारण जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है, अतः वह परिस्थितियों के आगे हार जाती है। इस उपन्यास में भी उन्होंने स्त्री के विभिन्न रूपों को दर्शाया है। बिना माँ की बेटी भटकती रहती है, फिर उसे अंत में मनीष के पास जाना पड़ता है। अतः उन्होंने समझौता करने की कारगर कोशिश को दर्शाना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा है। पैराग्राफ चेंज। समाज ने पुरुष को कई विषयों में निर्वाध स्वतंत्रता दे रखी है, जो नारी को नहीं प्राप्त है। यद्यपि कानून की दृष्टि से अब विधान में नारी को भी वे सभी अधिकार प्राप्त हो गए हैं जो एक पुरुष को प्राप्त है, फिर भी उन अधिकारों का प्रयोग करने में नारी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि समाज की मानसिकता परंपराओं से आज भी जुड़ी हुई है। मन्नू भंडारी के उपन्यास की दृष्टि परिपक्वता व शिल्प के सुनियोजन का असाधारण उदाहरण है। आपका बंटी, एक इंच मुस्कान और महाभोज में उनके रचनाकार की यह शक्ति देखी जा सकती है। पैराग्राफ चेंज। आपका बंटी में तलाकशुदा पति पत्नी की समस्या है, किंतु यह समस्या पति पत्नी के साथ साथ बंटी की भी है। शकुन इस उपन्यास की नायिका है, जो कि अजय नामक युवक की विवाहिता भी है, किंतु आपसी तनाव के कारण तलाक ले लेते हैं। किंतु इनके बीच में उस बच्चे की मानसिकता कैसी होगी जो कि माता व पिता में सामंजस्यता के अभाव में वे तो अलग अलग हो जाते हैं, किंतु वह बच्चा कहाँ रहे। इसमें पुरानी परंपराएं टूटने लगी, किंतु जिंदगी को चलाने के लिए इकहरी स्थिति नहीं होती। उषा प्रेमवदा के उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका की राधिका में भी इसी परिस्थिति के परिणाम स्वरूप आए विचलन दिखाई देते हैं। वहां भी उसके पिता दूसरा विवाह करते हैं, जिस कारण आधुनिक पढ़ी लिखी नारी के स्वतंत्र निर्णय लेने की उनकी मानसिकता चित्रित होती है। इन्होंने सामाजिक समस्या को ही चित्रित करने का प्रयास किया है। शकुन के पुनर्विवाह से बच्चा माँ के पास नहीं रहता। पिता के पुनर्विवाह के पश्चात बंटी पिता के पास भी नहीं रहना चाहता। इस प्रकार वह दोनों तरफ से मिसफिट होता है। माँ के पास सौतेला बाप होता है और पिता के पास सौतेली माँ, किंतु बेगुनाह बंटी के पास कोई भी नहीं होता। लेखिका स्वयं बंटी की पीड़ा दिखाने में खुद को भूल जाती है। उनका हृदय करुणा से भींग जाता है। पैराग्राफ चेंज। इस उपन्यास की रचना नारी की दोहरी मानसिकता को लेकर की गई है। इसमें उन्होंने नारी को दूसरा विवाह करने की स्वतंत्रता तो दी है, किंतु वह अपने बीते दिनों को नहीं भुला पाती। इस प्रकार वह दोहरी जिंदगी जीती है और शकुन आगे चलकर बदल जाती है। उसका अहम भाव झुक जाता है और जोशी के समक्ष खुद को समर्पित कर देती है। इस प्रकार यहाँ नारी के समर्पण की भावना को उजागर किया गया है। इस प्रकार इस उपन्यास में स्त्री व पुरुष दोनों चरित्रों को लिया गया है, जो विवाह के लिए तो स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं किंतु अतीत को भूल नहीं पाते। पृष्ठ संख्या 28। पैराग्राफ चेंज। मन्नू जी ने आपका बंटी की रचना बंटी को ही केंद्र में रखकर की है और इसी पात्र को दर्शाने के लिए शकुन व अजय को कथा रचना में स्थान दिया है। बंटी की समस्या आज के युग में मध्यवर्गीय समाज की समस्या है, अतः उनकी रचना दृष्टि इस उपन्यास में मनोवैज्ञानिक आधार पर केंद्रित है। पैराग्राफ चेंज। मन्नू भंडारी कृत आपका बंटी के सभी पात्र अकेलेपन की नियति को भोग रहे हैं। भिन्न भिन्न स्तर पर ये सभी पात्रों की समस्याएं जो टूटते तो हैं, किंतु हारते नहीं हैं। पैराग्राफ चेंज। एक इंच मुस्कान मन्नू भंडारी व राजेंद्र यादव की संयुक्त रचना है। इस उपन्यास के केंद्र में अमला व रंजना दो स्त्री चरित्र परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के साथ अवतरित हुई हैं। एक तरफ अमला विवाहित स्त्री जो पति द्वारा अपमानित किए जाने पर विरोधी प्रवृत्तियों को उजागर करती है, वह पूरे पुरुष वर्ग से अपने अपमान का बदला चुकाना चाहती है। मन्नू भंडारी ने अमला में विद्रोही दृष्टि को उजागर किया है। वहीं दूसरी ओर उनका स्त्री पात्र रंजना है, जो कि भारतीय संस्कारों में विश्वास रखते हुए पूर्णतः पति के प्रति समर्पित है। इन्होंने इस उपन्यास के माध्यम से भारतीय नारी के उस विशिष्ट वर्ग को मूर्त करने का प्रयास किया है, जो शिक्षित व आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हुए भी परित्यक्तता के अभिशाप को लेकर जीती है। उसमें वैवाहिक संबंधों में स्थिरता की आस्था नहीं है, वह प्रेम को ही महत्व देती है। लेखिका की दृष्टि रंजना अमला व अमर के त्रिकोणात्मक प्रेम के स्वरूप को उभारने में है। रंजना अमर की पत्नी है, जो कि साधारण नारी है। उसके पति दूसरी स्त्री के साथ प्रेम करते हैं, जिस कारण वह अमर को छोड़कर चली जाती है। इस उपन्यास की यही त्रासदी भी है। रंजना का एबॉर्शन उसके विचारों के विरुद्ध करवा दिया जाता है, जिस कारण वह अत्यंत दुखी हो उठती है और उसके पूर्ण समर्पण की भावना यहाँ खंडित होती नजर आती है। अंत में रंजना के चले जाने पर अमर अमला के साथ ही दुखी दिखता है। वह अमला को भी नहीं छोड़ता और रंजना को भी। इस प्रकार वह दुखी होकर आत्महत्या करता है। इस उपन्यास में नारी को भी पलायनवादी दिखाया गया है और पुरुष को भी, क्योंकि वह आत्महत्या करता है। अतः यह कहा जाए कि ये नारियां विद्रोह का विकल्प तो चुनती हैं, किंतु उसमें सफलता नहीं पाती और पुरुष पात्र पलायन का विकल्प चुनता है। यह एक सत्य ईमानदार मेहनती बालक जो है तो चमार का पुत्र, किंतु मेहनत करके पूरे राज्य को सुखी करना उसका उद्देश्य है। पैराग्राफ चेंज। महाभोज को चित्रित करने की मुख्य दृष्टि चुनाव राजनीति है। यह एक सामाजिक राजनीतिक उपन्यास होने के कारण इसमें राजनीति के दांव पेच व सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं हैं। सरोहा गांव में एक चुनाव होता है, जहां दो विरोधी शक्तियां टकराती हैं। इसमें विशु की हत्या होने पर विरोधी दोनों पार्टियों की नजर उसी पर होती है, जिस समय यह उपन्यास लिखा गया था उस समय देश में कांग्रेस का युग था, आपातकालीन लागू था। जनता की लहर ने जनता पार्टी को चुना और उस समय उस पार्टी के संरक्षण में मनमाने भ्रष्टाचार समाज में व्याप्त हो गए। पृष्ठ संख्या 29। उसी बात को ध्यान में रखकर इस उपन्यास की रचना की गई है। सरोहा गांव में हरिजनों की बस्तियों को जला दिया जाता है, झोपड़ियां जलाकर राख बन जाती हैं और मनुष्य को मनुष्य न समझकर कबाब बना दिया जाता है, किंतु उसकी रिपोर्ट भी किसी को नहीं मिलती। चुनाव के आने पर बिसु की मौत को लेकर सभी नेता सामने आ गए। वे महाभोज का जुगाड़ करने मैदान में उतर गए। सत्ता का मोह दास साहब और संकुल से छूटता नहीं, जिसके कारण दोनों के आचरण गिर जाते हैं। महाभोज में परंपरागत रूढ़ी से हटकर जीवन की सच्चाई, ईमानदारी, मृत्यु पर स्वार्थ पूर्ति का महाभोज है। देश की प्रगति के साथ साथ हमारे गांव, सड़कों, सभी का विकास होता है, किंतु राजनीतिक समझौते के कारण वह अपने पुरानी सामंती संस्कारों को ऊपर से ढकना चाहते हैं। राजनीति में आदमी न तो बड़ा होता है और न ही घटना ही बड़ी होती है, बस मौका होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज। मन्नू जी ने समाज के विकृत पूंजीवादी ढांचे को भी उजागर किया है। आर्थिक विपन्नता का सुंदर प्रभावपूर्ण सजीव चित्रण हीरा के माध्यम से किया गया है। पैराग्राफ चेंज। इस उपन्यास में सुविधावादी वर्ग व्यक्तिगत स्वार्थ के आगे देश, समाज, पक्ष सभी को भूलकर अपने हित पद को सबसे पहले महत्व देते हैं। आर्थिक शोषण के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि इस उपन्यास के केंद्र में है। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार महाभोज समकालीन भारतीय जीवन के यथार्थ की समग्रता में देखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसमें मन्नू भंडारी अपनी रचनात्मकता के शिखर पर दिखाई देती हैं। पैराग्राफ चेंज। डार से बिछड़ी में कृष्णा सोबती सेक्स की स्वच्छंदता को अधिक महत्व देती है। इसकी नायिका पाशो है, जो प्रेम में स्वतंत्रता की आकांक्षा को लिए रहती है, किंतु उसकी माँ परंपरा व संस्कारात्मक दृष्टि की होने के कारण उसे स्वतंत्रता नहीं देती। पासो उनका विरोध करती है और घर छोड़कर चली जाती है। उसे लूटने वाले पुरुष अनेक मिल जाते हैं, किंतु उसे प्यार करने वाला कोई पुरुष नहीं मिलता। अंत में वह अपना सब कुछ लूटकर अपनी माँ के पास अर्थात डार पर आ जाती है। इसके केंद्र में स्त्री चरित्र है, जो कि स्वतंत्र प्रेम की आकांक्षी है, किंतु वह स्वतंत्रता उसका सब कुछ लूट लेती है। इस कारण इस स्त्री को विरोधी होने पर समझौते को ही अपना विकल्प चुनने पर मजबूर होना पड़ता है। पैराग्राफ चेंज। कृष्णा सोबती ने लगभग अपने सभी उपन्यासों में नवीन और अनछुए प्रसंगों को रचनात्मक स्तर पर गहरी संवेदना के साथ नारी मन की उस पर्थ को उभारने का प्रयास किया है, जिसमें उसकी इच्छाएं और भावनाएं परंपरा, धर्म और नैतिकता के नाम पर कुचलती रहती है। मित्रों मरजानी की सुमित्रा, सूरजमुखी अंधेरे की रत्ती जैसी नारियों के चित्रण में लेखिका की प्राथमिकता को आंका जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। मित्रों का चरित्र हिंदी साहित्य में अनूठा है। मित्रों जैसे पात्र समाज में विद्यमान अवश्य रहे हैं, लेकिन उन्हें साहित्य में लाकर संवेदनात्मक धरातल पर इतनी गहराई और ईमानदारी से वर्णित करने का साहस किसी भी साहित्यकार में विकसित नहीं हो पाया है। मित्रों व्यक्तिगत सुखोपभोग के लिए आकुल अकेली नारी नहीं है, यह सामाजिक तथ्य भी है। अतृप्ति की पीड़ा और कुंठा का दर्द केवल मित्रों को ही नहीं झेलनी पड़ती, किसी न किसी रूप में यह पीड़ा और व्यथा हर नारी को भुगतनी पड़ती है। पृष्ठ संख्या 30। लेकिन पारिवारिक भय और सामाजिक प्रतिष्ठा के लोभवश नारी अपनी कामनाओं को व्यक्त नहीं करती। मित्रोइन सबसे अलग है। वह अतृप्त के दंश को धर्म, नैतिकता, परंपरा और सामाजिक तिरस्कार के डर से चुपचाप सहन करती है। वह उसमें विद्रोह तो करती है, किंतु अपने पत्नीत्व का लोभ उसे इस बंधन से मुक्त नहीं करता। इस कारण यह समझौता ही स्वीकार करती है। इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा स्त्री चरित्र है जो विद्रोह तो सामाजिक परिस्थितियों से करती है, किंतु उसके बावजूद समझौता ही स्वीकार करती है। दूसरी तरफ उसकी माँ को दिखाया गया है कि स्वतंत्रता पूर्वक अनेक पुरुषों से संबंध रखती है, किंतु उसकी कामना तृप्त नहीं होती। इस नारी को स्वतंत्रता की पक्षधर ही कह सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। कृष्णा सोबती के उपन्यासों के आधारभूत तथ्य का विश्लेषण करने पर जो तथ्य सामने आता है वह स्त्री पुरुष का बहुआयामी चित्रण है। सूरजमुखी अंधेरे उपन्यास में सोबती ने बलात्कार की शिकार रत्ती की सेक्स जनित समस्या को विभिन्न कोणों से देखा परखा है। अब तक सेक्स का संबंध प्रेम और विवाह से जुड़ता रहा है, परंतु इस उपन्यास में रत्ती के जीवन में आने वाली हर परेशानी ही उसके मार्ग में अवरोधक बनती है। रत्ती बचपन में बलात्कार की शिकार हो गई, इस कारण वह आतंकित भटकती रहती है। वह अपना लक्ष्य तो पाना चाहती है किंतु सहमी रहती है। वह विवाह को महत्व न देकर सेक्स को अधिक महत्व देती है। वह किसी का प्यार चाहती है। दिवाकर जब उसे फोन करता है, वह दिवाकर से मिलने के पश्चात अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पा जाती है, किंतु दिवाकर से विवाह नहीं कर सकती। वह एक विवाहित पुरुष है। वह अपना गुमनामी रास्ता ही तय करने का फैसला करती है। इस उपन्यास के केंद्र में स्त्री चरित्र को लेकर लेखिका ने यह दर्शाने की कोशिश की है कि सेक्स ही अधिक महत्व रखता है। विवाह गौण रूप है। इसकी नारी रत्ती विद्रोहिणी तो नहीं है, किंतु समझौतावादी अवश्य है। पैराग्राफ चेंज। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास है। इसमें लेखिका अतीत की मीठी यादों को अत्यंत सजीवता से प्रस्तुत करती है। उपन्यास में शाह भाइयों को केंद्र में रखा गया है। बड़े भाई अत्यंत उदार प्रकृति के हैं, जो एक व्यवहार कुशल राजनीतिक होते हुए भी शिक्षित विद्वान भी हैं। वे देखने में सुंदर, गंभीर व व्यवहार अत्यंत विनम्र है। कानून के वे दाव पेचों से भली भांति परिचित हैं। वे सरकार व पुलिस के लोगों का आदर सत्कार भी करते हैं। वे गांव के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सभी गरीबों की मदद करते हैं। पैराग्राफ चेंज। छोटे भाई काशी साह संत व उदात्त प्रकृति के हैं। वे भी अपने भाई के अनुयायी हैं। बड़ी साहनी उदार परिश्रमी व्यवहार कुशल नारी है, किंतु छोटी साहनी अधिक लाडली है, जिसके पति द्वारा वैराग्य धारण करने पर उसके पत्नीत्व की कमक अधूरी रह जाती है। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार इस उपन्यास को लेखिका ने राजनीतिक व सामाजिक दृश्यों को सामने रखकर लिखा है। उसमें स्वतंत्रता से पहले की जो पाकिस्तान में कृषक संस्कृति, महाजनी व्यवस्था, हिंदू मुस्लिम संबंध, गाँव चौपाले, सुख दुख, राग द्वेष, प्रेम प्यार, आदर सत्कार की जो भावना पाई जाती थी, उस दृश्यावली को उजागर किया है। यही इनके रचना लेखन का मुख्य कारण भी रहा है। पैराग्राफ चेंज, पृष्ठ संख्या 31। युग परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित मूल्यों ने नारी की चेतना को विभिन्न स्तरों पर आंदोलित किया है। बदलते परिप्रेक्ष्य में आचरण संबंधी नैतिकता, अनैतिकता की परिभाषा एवं मुहावरों की नूतन अर्थवत्ता की आवश्यकता आधुनिक नारी ने अनुभव की, तथा समय समय पर स्वतंत्र विचार संप्रेषण में वे निसंकोच आगे बढ़ी। यौन संबंधों को लेकर पवित्रता स्थायित्व संबंधी नई संकल्पना में दिखाई पड़ती है, किंतु स्त्रियों में जितना परिवर्तन दिखाई देता है उतना पुरुष की मानसिकता में नहीं दिखाई पड़ता। इस कारण दोहरी मानदंडों, नैतिकता अनैतिकता संबंधी दोनों दृष्टिकोणों में सामंजस्य नहीं हो पाता। यही दुखद परिणाम पुरुषों की अपेक्षा नारी को अधिक भोगने पड़ते हैं। पैराग्राफ चेंज। ममता कालिया ने बेघर उपन्यास में आधुनिक कही जाने वाली एक ऐसी नारी का चित्रण किया है जो विवाह के पश्चात यौन संबंधों को स्वीकारती है, किंतु जीवन भर अकेलेपन और घुटन की पीड़ा को सहने के लिए मजबूर कर दी जाती। बेघर की समस्या प्रेम की समस्या है, किंतु यह अन्य उपन्यासों की अपेक्षा अलग दृष्टिकोण रखती है। इसमें संजीवनी का विवाह परमजीत से कर दिया जाता है, किंतु परमजीत उसे संदेह की दृष्टि से देखता है, जिस कारण उसमें शक पैदा हो जाता है और इस कारण दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। परमजीत एक गंवार लड़की से विवाह करता है और वहां वह बाप पति तो बन जाता है, किंतु उसका अकेलापन उसका पीछा नहीं छोड़ता। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार इस उपन्यास में स्त्री चरित्र व पुरुष चरित्र दोनों को लिया गया है। लेखिका ने पुरानी धारणाओं को हटाने की कोशिश की है और प्रेम को नया स्वरूप देकर अंकित करती है। यहाँ भी परंपराओं को महत्व देने के कारण नारी के पक्ष में तो उसे हारना पड़ता है, किंतु पुरुष को स्वतंत्र दिखाकर उसका विवाह तो किया जाता है, परंतु उसके अतीत की घुटन रह जाती है। पैराग्राफ चेंज। ममता कालिया ने नारी को अपनी निजी व्यक्तिता को लेकर आंतरिक कुंठा, त्रासद, अवसाद से ग्रसित दिखाया है। उनकी कुंठाएं उनके द्वारा स्वयं स्वीकार की गई हैं। इनके व्यक्तित्व में पाश्चात्य देखने का प्रभाव भी देखने को मिलता है, किंतु उसके साथ साथ उनमें भारतीयता की जड़ें घर की रहती हैं। उनमें व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना का उदय चेतनात्मक स्तर पर होता है, किंतु भावनात्मक स्तर पर इतनी सहज नहीं हो पाती है। पैराग्राफ चेंज। बेघर की कैकी भी इसी अकेलेपन के परिणाम स्वरूप त्रास को भोगती है और कुंठित हो जाती है। इस दृष्टि से यहाँ नारी स्वयं हारना स्वीकार करती है। पैराग्राफ चेंज। ममता कालिया अपने उपन्यासों में प्रेम को अधिक उजागर करने की कोशिश करती है। इन्होंने अपने उपन्यास नरक दर नरक में दो युगल लिए हैं, एक तो उषा व जगन, दूसरी सीता व और विनय। उषा प्रेम विवाह करती है, उसके घर वाले उसका विरोध करते हैं किंतु वह नहीं मानती। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन दोनों के रिश्तों में अनबन होती है। पृष्ठ संख्या 32। किंतु समय के परिवर्तन के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। दूसरा युगल सीता और विनय का है। विनय तो राजनीति में व्यस्त है और सीता घरेलू कामकाज में। दोनों एक दूसरे के लिए समय नहीं दे पाते, जिस कारण दोनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। पैराग्राफ चेंज। इस उपन्यास में स्त्री पात्रों को केंद्र में रखा गया है। उषा द्वारा समाज का विद्रोह कर जगन से विवाह करना उसकी स्वतंत्र चेतना का पक्षधर है। इस उपन्यास की नारी जड़ सामाजिक परंपराओं का विरोध करती है, वह हारती नहीं है। पैराग्राफ चेंज। ममता कालिया की दृष्टि प्रेम संबंधों व सेक्स पर अधिक गई है। इनके उपन्यासों की मूल समस्या अंतर जातीय विवाह व प्रेम की समस्या है। प्रेम कहानी में जया गणेश के प्रेम विवाह का वर्णन है, जो कि एक साहसी विद्रोही प्रवृत्ति की नारी है। वह प्रेम करती है, वह परिवार का विरोध करके विवाह भी करती है, जिसमें वह सफल भी रहती है। इस युगल से स्त्री चरित्र को केंद्र में रखा गया है और वह जड़ सामाजिक परंपराओं को उतना महत्व न देकर अपनी मंजिल पाती है। वह हारती नहीं है, विद्रोह करती है। दूसरी ओर इन्होंने इसी उपन्यास में यशा को लिया है, जो कि प्रेम तो करती है किंतु सहमी सहमी व शांत प्रवृत्ति की होने के कारण अपने परिवार का विरोध नहीं कर सकती, जिस कारण उसे अपने प्रेम को छोड़ना पड़ता है। उसमें आत्मपीड़न की भावना जागृत होती है। उसका विवाह परिवार द्वारा दूसरे पुरुष से कर दिया जाता है। इस प्रकार वह विवाह के लिए स्वतंत्रता तो चाहती है किंतु विरोध न कर सकने के कारण हार जाती है और अपनी घुटन का वह इस उपन्यास में इजहार भी करती है। इन्वर्टेड कॉमा अबन। संगमरमर की दीवाले में विशेष सुरक्षा के लिए भाई साहब ने एक नन्हा शटर बनवाकर लगवा दिया। अब बता, जहां भगवान भी शटर में कैद हो, वहां इंसान को कोई मोहलत कैसे मिल सकती है। जिधर नजर डालो बस लोहा ही लोहा नजर आता है, कहीं सचल तो कहीं अचल। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ प्रेम कहानी ममता कालिया, पृष्ठ संख्या 91। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार यशा का चरित्र विद्रोही न होने के कारण घुटन भरा है। यह यहाँ अपनी परिस्थिति से हार जाती है, अतः कहा जाता है कि प्रेम कहानी की जया विद्रोही का रूप धारण करती है तो यशा समझौते को ही अपना विकल्प चुनती है। पैराग्राफ चेंज। प्रत्येक साहित्यकार का प्रत्येक रचना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है, उसी के आधार पर अपनी रचना करता है, चाहे वह रचना दृष्टि परोक्ष रूप में हो या प्रत्यक्ष रूप में। कई रचनाकारों का दृष्टिकोण दर्शनात्मक भी होता है। जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण उनकी रचनाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष होते हैं। शिवानी जी का जीवन संबंधी दृष्टिकोण उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। शिवानी की रचना दृष्टि में खास तरीके के आदर्शवाद के लिए आग्रह दिखाई देता है। इन्होंने शमशान चंपा, मायापुरी और विषकन्या जैसे रूमानी उपन्यास भी लिखे हैं। इन उपन्यासों का आधार भाव करुणा है। यह करुणा जीवन की विडंबनापूर्ण स्थितियों के कारण रूप लेती है। स्त्री पुरुष संबंधों को भी शिवानी ने खास दृष्टिकोण से देखा है। चीजों को सम्मोहक ढंग से प्रस्तुत करना उन्हें प्रिय है। उनमें पुरुष और आकर्षण, स्त्री पुरुष और रोचक सम्मोहक स्थितियों के लिए आकर्षण अधिक है। वे अपनी रचनाओं में इन स्थितियों को बार बार दोहराती हैं। पैराग्राफ चेन, शिवानी मुख्यतः रोमांटिक बोध की लेखिका है। यथार्थ उनके लेखन में उनकी शर्तों के अनुरूप रूपांतरित होता है। यह यथार्थ मोहक और रोमांचपूर्ण है। कभी कभी उनमें अद्भुत नाटकीयता भी दिखाई देती है। इनके उपन्यास में पहाड़ी जीवन को भी जैसा का तैसा दिखाया गया है। पहाड़ी जीवन के रहन सहन, अशिक्षा, अंधविकास आदि के बीच जीवन का भोलापन प्रस्फुटित होता दिखाई देता है। पैराग्राफ चीन, शिवानी ने कुछ उपन्यासों में अवैध संतान की समस्या को लिया है। यह नारी की अस्मिता से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। आज का समाज निर्दोष संतान को मारने में अपनी इज्जत समझता है। उसे आश्रय देने के कारण उस पर कीचड़ उछाला जाता है। इस समस्या पर ही इनका उपन्यास किंशु नली का डांट है। इस उपन्यास की मूल समस्या अवैध संतान की है। इन्होंने इसमें यह दिखाने का प्रयास किया है कि पुरुष कितना भी संयमी हो, किंतु वह एक युवती को देखकर लालायित हो उठता है। पुरुष की आपराधिक प्रवृत्ति ही ऐसी घटनाओं के मूल में होती है, किंतु इस उपन्यास में उसका शिवानी जी ने निराकरण भी किया है। उसके पिता पुत्र द्वारा जब उसको स्पष्ट रूप दे देते हैं, तब उसे अवैध संतान नहीं कहा जाएगा। समाज उस कुटिल को ढूंढने का प्रयास करे तो ऐसी बातें ही न हो, लेकिन वह ऐसा करने के स्थान पर (open) उससे कुछ नहीं कहता जिसने उस पगली किंशु नली का सर्वनाश किया है। लेकिन उस असहाय निर्दोष मासूम पगली को समाज निकाल देता है। (close) संदर्भ ग्रंथ किंशु कली का ढाट, शिवानी, पृष्ठ संख्या 27-28। हमारा जड़ समाज ऐसे बच्चों को तिरस्कृत करता है, किंतु ऐसे बच्चों के लिए ईसाइयों के मिशन के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। कृष्ण कली इसका एक उदाहरण है। इस उपन्यास में कृष्ण कली को पालने वाली संत क्रिश्चियन महिला पैट्रिक है और सुरंगमामा को भी अवैधता से बचाने वाली क्रिश्चियन महिला ही है। इस उपन्यास की इस महिला ने अपने भाई के साथ लक्ष्मी का विवाह करवाकर सुरंगमा को समाज की तिरस्कृत दृष्टि से बचाया है। इसमें सुरंगमा की माँ स्वयं गजानन के साथ गंधर्व विवाह करती है, किंतु गजानन के द्वारा उसे धोखा दिया जाता है। इस दृष्टि को उन्होंने रॉबर्ट से विवाह करवाकर उसका समाधान प्रस्तुत किया है। पैराग्राफ चीन, कैंगजा उपन्यास भी अवैध संतान की समस्या पर केंद्रित है। इसकी नायिका सुंदरी है, जिस पर आसक्त प्रेमी की मूक मौन भावना को हृदय में संजोए रखता है। इसमें उस प्रेमिका के मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। सुरेश भट्ट से विवाह न कर सकने के कारण वह भयानक सेक्स मैनियाक बन जाती है और उसके अपराधवश उत्पन्न संतान को प्रेमिका लेकर स्वयं पालती है। वह कहती भी है (open) क्या अपनी इस अवस्था के लिए अकेली किसना ही अपराधिनी है। मिंशु नली कहीं नहीं जाएगी, मैं पालूंगी उसकी संतान को। (close) संदर्भ ग्रंथ किंशु कली का ढांट, शिवानी, पृष्ठ संख्या 27। यहाँ पर नारी को ही किस्मत के आगे हारना पड़ता है। ये संतानें बड़ी होने पर रुग्ण मानसिकता की शिकार हो जाती हैं कि उनके पिता कौन है। पृष्ठ संख्या 34। यह कुंठा उन्हें स्वयं सुलझानी पड़ती है। कृष्ण कली की कली भी विद्रोहिणी बन जाती है और उसे अपनी माँ को देखना पड़ता है। सुरंग माँ छोटी उम्र में प्रौढ़ हो जाती है। वह अपने माँ बाप की वैमनस्यता के कारण विवाह न करने का निश्चय करती है, किंतु उसके विवाह न करने के परिणाम और गंभीर होते हैं। वह एक मंत्री की रक्षिता बन जाती है। कैंगजा का रोहित अपने अवैध संतान होने की गुत्थी को सुलझाने के प्रयत्न में अपनी माँ को भी खो बैठता है। नारी जीवन की इस दुखद स्थिति को ही उपन्यास के माध्यम से उजागर करने की कोशिश की गई है। समाज नारी को सारा दोष क्यों देता है? वह पुरुष से क्यों नहीं कहता? पैराग्राफ चेंज। आधुनिक नारी की समस्याओं के विविध रूपों को समझते हुए शिवानी वैश्यवृत्ति के लिए विवश नारियों की स्थिति पर भी लिखती हैं। वे उसकी जीवन के तमाम छोटे बड़े सवालों को पकड़ना चाहती हैं। किस प्रकार से समाज के हाथों उन्हें बड़े बड़े जुल्म सहने को तत्पर होना पड़ता है, या स्वतंत्रता की अभिलाषी होने की भावना उन्हें इस ओर अग्रसर कर देती है। सुरंगमा की सुरंगमा कृष्णकली की कृष्णकली व स्मशाल चंपा की जूही, रथ्या की बासंती वैश्यावृत्ति के लिए विवश स्त्री चरित्र हैं। कृष्णकली की पन्ना और मुनीर गाने वालियां हैं। इनके उपन्यास में तनखा व्यापार करने वालियों में 14 फेरे की मल्लिका और सुरंगमा की गौहर जान व नवाब जान दिखाई देती है। 14 फेरे में देश की बदलती हुई सामाजिक स्थिति व वर्तमान दिशा को चित्रित किया गया है। इसमें शिवानी जी ने नारी को ही लिया है। वे दर्शाती है कि आज नारी शिक्षित होते हुए भी अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को विकसित तो करती है, किंतु सार्थकता को ग्रहण नहीं कर पाती। इसे ग्रहण करने में उन्हें असफलता ही मिली है। अहिल्या के चरित्र द्वारा इस बात को उजागर किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। शमशान चंपा उपन्यास में चंपा को सामने रखकर उपन्यास पर दृष्टिपात करें तो इस उपन्यास की चंपा में पलायनवादिता नहीं है। यह दृढ़ प्रतिज्ञ है जो कि न झुकती है, न हारती है और न ही टूटती है। इस उपन्यास में शिवानी जी ने दो पीढ़ियों का संघर्ष उजागर किया है। इस उपन्यास में उन्होंने उस पहाड़ी समाज के व्यक्तित्व को दिखाने की कोशिश की है जो हमारे मन में करुणा, संवेदना या जिन परिस्थितियों के आधार पर ऐसा हुआ है उन्हें सोचने के लिए हमें अग्रसर करता है। यही इस उपन्यास की महान उपलब्धि है। इसकी नायिका घर से भाग जाती है, प्रेमी के ठोकर मारने के पश्चात वह कैबरे डांसर बन जाती है। वहां वह फिर से दूसरे पुरुष से प्रेम करती है और उसके खून होने के आरोप में जेल पहुंचती है। यह सब संयोगवश ही होता है। पैराग्राफ चेंज। मायापुरी में सामंतवादी और पूंजीवादी प्रवृत्ति पर आक्रमण करने में शिवानी जी को कुछ सफलता मिली है। इसकी मुख्य समस्या आर्थिक है। मानसिक शांति को धन द्वारा क्रय करना असंभव है। इस उपन्यास की रचना में इनकी यही दृष्टि है। पैराग्राफ चेंज। कृष्णकली उपन्यास की रचना में शिवानी जी जीवन की वर्जनाओं, सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों का द्वंद, राजनीतिक प्रपंच, युवा पीढ़ी का उच्छृंखल व्यवहार आदि चित्रणों द्वारा पूरे युग के मानव को ही हमारे समक्ष उपस्थित करती है। पृष्ठ संख्या 35। कृष्णकली अपनी कोढ़ी माँ बाप की अवैध संतान है। वह अपने में अपने पिता माता का प्यार, जीवन का प्रेम, समाज में मान व्यवहार की कामना करती है, किंतु इन सभी को छोड़कर उसे मिलती है केवल घृणा व उपेक्षा। इन सभी बातों से हार कर वह असामान्य चरित्र बन गई है। पैराग्राफ चेंज। रति विलाप उपन्यास भी एक स्त्री चरित्र को लेकर ही सामने आता है जो स्वयं तो संयमी, सुंदर, उदात्त चरित्र की है, किंतु उसके पति की मृत्यु के पश्चात उसके ससुर पतिहंता हीरा नौकरानी के साथ भाग जाते हैं। इस उपन्यास की मूल समस्या है मन की गहराइयों को समझना और समझाना। वृद्धावस्था में वह अपनी पुत्र वधु को छोड़कर हीरा के साथ भाग जाते हैं। उसे उस समय निराश्रित पुत्र वधु का ख्याल भी नहीं आता। उसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता कि वह ऐसा कार्य करेगा। इसके माध्यम से शिवानी जी ने दिखाने का प्रयत्न किया है कि इसका दुष्परिणाम क्या है। इनके उपन्यास की नियति दुखांत होने में है। इनके उपन्यास अधूरे व भावुकतापूर्ण दिखाई देते हैं। पैराग्राफ चेंज। भैरवी उपन्यास की रचना में भी इन्होंने स्त्री पात्र को केंद्र में रखा है। चंदन मध्यवर्गीय समाज की नारी है जिसके द्वारा शिवानी ने तीन पीढ़ियों की प्रतिक्रियाओं को दिखाने का प्रयास सफलतापूर्वक किया है। इसमें पहली पीढ़ी छोटी सी गलती को अपना भयंकर अपराध मानती है जो स्वयं ठोकर खाना पसंद करती है, किंतु उसका असर उसके संतान पर न हो इसका पूरा ध्यान रखती है। दूसरी पीढ़ी माँ के अवलंबन को नहीं बर्दाश्त करेगी, अगर उसका कोई अपराध नहीं भी है तो भी, किंतु वह अगर यह स्वीकार करे तो भी वह स्वयं सामाजिक दबाव और आत्म पीड़ा को नहीं सहेगी। पैराग्राफ चीन। शिवानी जी चंदन के साथ सहानुभूति रखती है और उसे दर्शाने की कोशिश भी करती है कि क्या उसका कसूर है, उसने अपराध क्या किया है। उसकी निरपराधता का साक्षी उसका स्वयं पति है, किंतु वह स्वयं भी समाज के डर से उसे अस्वीकार कर देता है। पैराग्राफ चीन। तीसरी पीढ़ी अत्यंत व्यस्त है जो कि जीवन यापन के लिए हमेशा भागदौड़ में लगी रहती है। पति की व्यस्तता पत्नी की फैशन परस्ती के कारण वह अपने मनोरंजन के साधनों को जुटा लेती है। भारतीय व पाश्चात्य संस्कृतियों का प्रभाव उसके अनुकूल पात्रों को सामने खड़ा करके सभी बातों का निर्णय स्वयं पाठकों पर छोड़ती है। पैराग्राफ चेंज। शिवानी जी अंधविश्वासों से दूर रहने की दृष्टि रखती हैं। वे कहती भी हैं कि योगियों से भोगी अच्छे हैं। आज हमें पुरानी रूढ़ियों को बदलकर नए मानदंड स्थापित करने होंगे। लोकलाज को छोड़कर उन्हें परिवर्तित करना ही उनका महान उद्देश्य है। पैराग्राफ चेंज। मृदुला गर्ग ने अपने उपन्यास उसके हिस्से की धूप के केंद्र में जितेन मधुकर और मनीषा को लिया है। मनीषा जितेन पति पत्नी है। जितेन अपने कार्य में व्यस्त रहता है, इस कारण मनीषा स्वयं को उपेक्षित महसूस करती है। इसको प्रेम कहानी की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, प्रेम समस्या की दृष्टि से नहीं। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता का अभिलाषी होता है। वह मधुकर के प्रति आकर्षित होती है और उसी के प्रेम में बन जाती है। यहाँ लेखिका का मनीषा मधुकर जितेन के त्रिकोणात्मक प्रेम के स्वरूप को उजागर करती है। पृष्ठ संख्या 36। जितेन उसका विरोध नहीं करता, वह अपनी पत्नी को मधुकर के पास जाने देता है। मनीषा अंत में जितेन के पास लौट आती है। पैराग्राफ चेंज। इस रचना में पुरुष व स्त्री दोनों को केंद्र में लिया गया है। मनीषा का प्रेम समझौतावादी दृष्टि को उजागर करता है और जितेन का प्रेम उदात्त दृष्टिकोण का प्रतीक है। इसके स्त्री पात्र विरोधी होते होते समझौता कर लेते हैं और पुरुष पात्र स्वीकारात्मकता को उजागर करता है। पैराग्राफ चेंज। चितकोबरा में नारी की भावनाओं को दृष्टि में रखकर रचा गया है। इसमें मनुष्य के तन की अपेक्षा मन को अधिक महत्व दिया गया है। अगर मन से विवाह न हुआ हो तो वह सिर्फ तन का मिलन ही कहा जाएगा, न कि मन का। पैराग्राफ चेंज। पतझड़ की आवाजी उपन्यास में अनुभा आत्मनिर्भर है, जो नौकरी भी करती है, किंतु खराब बिल्डिंग में रहने के कारण उसका प्रेमी उसे त्याग देता है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह उक्त स्थान को न छोड़ने के लिए मजबूर है। दूसरी ओर सुनीला को पारिवारिक परिवेश के कारण नौकरी छोड़नी पड़ती है। एक संपन्न पुरुष से उसका विवाह करवा दिया जाता है, जिससे उसकी अनबन होने के कारण विवाहित जीवन तलाक में परिवर्तित हो जाता है। इस कुंठा को वह सहन न कर पाने के कारण आत्महत्या कर लेती है। तीसरा नारी चरित्र उषा का है, जो कि किसी भी पुरुष के साथ जीने में हिचकिचाती नहीं। पैराग्राफ चीन। इस प्रकार इस उपन्यास के केंद्र में तीनों स्त्री चरित्र हैं। एक तो उपयोगितावादी है, दूसरा समझौतावादी और तीसरा पलायनवादी दृष्टि रखती है। पैराग्राफ चीन। मेरा नरक अपना है उपन्यास में नारी की जटिलताओं का वर्णन है। इसमें प्रेम को अधिक महत्व दिया गया है। यह प्रेम त्रिकोणात्मक है। शीला हिरेन कपूर पति पत्नी है और सुमित शीला का प्रेमी। समाज के डर के कारण अथवा परंपरावादी दृष्टि के कारण वह पति को नहीं छोड़ना चाहती। यह रूढ़ी को उजागर किया गया है, किंतु दूसरी ओर वह अपने प्रेमी को भी नहीं छोड़ती। वह स्वतंत्रता की पक्षधर भी है। सेक्स को इस उपन्यास में महत्व दिया गया है। वह अपनी प्रेमी से संबंध भी स्थापित करती है। उसके विवाहित जीवन में दरार पड़ जाती है। उसकी पुत्रियां भी दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं, किंतु माँ बाप के होने के कारण वे उसे एक अलग भूमिका ही प्रदान करना चाहते हैं। छोटी पुत्री का विवाह करवा देते हैं, बड़ी पुत्री कहाँ जाए यह फैसला नहीं कर पाती। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार निरुपमा सेवती स्वतंत्रता की पक्षधर होते हुए भी स्त्री के मनोभावों को समझती है। वे विद्रोह तो करती है, किंतु पछताती भी है। अतः यह न पलायनवादी दृष्टि रखती है और न ही विद्रोही, बल्कि समझौतावादी दृष्टि ही कही जा सकती है। पैराग्राफ चेंज। बढ़ता हुआ आदमी उपन्यास में लेखिका की रचना दृष्टि व्यक्तित्व को निखारने के रूप में उजागर हुई है। इसके केंद्र में स्त्री चरित्र ही है। शरद का विवाह मंजू से होता है। उसकी एक संतान भी है। आर्थिक विपन्नता के कारण वे बंबई जाते हैं। वहां वह अनीता सुनंदा से मिलता है। अनीता का प्रेमी विपन्नता के कारण अनीता से बुरे कार्य करवाना चाहता है, जिसके लिए वह तैयार नहीं होती। पृष्ठ संख्या 37। दूसरी ओर सुनंदा के पिता नहीं माँ के मर्द है। इस कारण उसको परिस्थितियों के जाल में उलझा दिया गया है। सुशीला अनीता दोनों फिल्मी दुनिया के चकाचौंध में पड़ जाती है। अनीता शरद के गलत संबंध स्थापित हो जाते हैं, जिस कारण शरद का विवाहित जीवन त्रासदी से घिर जाता है। सुशीला को पैसे के कारण खुद को बेचना पड़ता है। इसमें लेखिका ने प्रेम के जटिल स्वरूप को उजागर करने की कोशिश की है। यहाँ नारियों को हारना पड़ता है, वे विद्रोही व स्वतंत्रता की पक्षधर तो होती हैं, किंतु सामाजिक परिवेश के कारण उन्हें या तो पलायनवादी दृष्टि रखनी पड़ती है या तो समझौतावादी दृष्टि। पैराग्राफ चेंज। निरुपमा सेवती के दहवन के पार की गर्भवती तुषार असलम द्वारा छोड़ दिए जाने पर साहसपूर्वक परिस्थितियों का सामना करती है। वह निरंतर संघर्ष करती है किंतु परिस्थितियों से, विषमताओं से पलायन नहीं करती। उसकी दृष्टि में इन्वर्टेड कॉमा ओपन जिंदगी कोई सतही चीज नहीं, हिसाबी किताबी या देहवासियों के लिए वह सतही हो सकती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ दहकन के पार उपन्यास निरुपमा सेवती पृष्ठ संख्या 20-21। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार नारी केंद्र में है और वह विद्रोहिणी तो नहीं है किंतु पलायनवादी भी नहीं है, अतः कहा जाए कि वह समझौतावादी दृष्टि को महत्व देती है। पैराग्राफ चेंज। मेहरुन्निसा परवेज अपनी रचनाओं में प्रेम के स्वरूप को विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर उजागर करती है। आंखों की दहलीज उपन्यास में रेहाना जावेद तालिका समीम दो युगल हैं। रेहाना अपने बच्चों को जन्म देने माँ के घर जाती है तो पीछे तालिका के प्रति उसके पति आकर्षित होते हैं। तालिका व जावेद एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यहाँ पर तालिका पत्नी के रूप में कुंठित हो जाती है और उसमें हीन भावना घर करती है। लेखिका इसमें तालिका की सुविधा को ही उजागर करने की दृष्टि को लेकर चलती है और यह यहाँ दृष्टव्य भी होता है। तालिका अपने पति को भी नहीं छोड़ना चाहती और अपने प्रेमी को भी, इसी कारण वह आत्महत्या करती है, बचने पर घर से भाग जाती है। उपन्यास के केंद्र में पलायनवादी स्त्री को रखा गया है जो न विद्रोही है और न ही समझौतावादी। पैराग्राफ चेंज। उसका घर उपन्यास में मेहरुन्निसा परवेज ने सेक्स के रूप में ही प्रेम को उजागर करना चाहा है। इस उपन्यास का केंद्र बिंदु स्त्री चरित्र है। एल्मा का विवाह पारिवारिक दृष्टिकोणों के आधार पर होता है, किंतु दोनों में असामंजस्य के कारण तलाक हो जाता है। दूसरी ओर रेशमा है जो कि विवाह के प्रति स्वतंत्रता की दृष्टि रखती है। वह विद्रोह भी करती है और प्रेम भी। अपनी माँ के कारण विवाह न कर पाने के कारण रेशमा अपनी माँ की मौत का इंतजार करती है। तीसरा चरित्र सोफिया का है जो आधुनिक नारी होने के कारण उसके पुरुष के प्रति उसका दृष्टिकोण भी अलग है। वह विवाह की अपेक्षा प्रेम को ही अधिक महत्व देती है। इस प्रकार इसकी रचना में तीनों स्त्री चरित्र ही आते हैं, किंतु तीनों का दृष्टिकोण एकदम अलग है। एक समझौतावादी है, दूसरी रेशमा विद्रोही भावना को रखती है और तीसरी सोफिया प्रेम के प्रति हारने में नहीं जीतने में अधिक रुचि रखती है। वह स्वतंत्रता की पक्षधर है। पृष्ठ संख्या 38। कोरजा उपन्यास में आर्थिक विपन्नता को उजागर करने का एक सफल चित्रण है। इसमें अनेक स्त्री चरित्र हैं जो कि आर्थिक विपन्नता के कारण अपनी आकांक्षाओं का गला घोटते हैं। पैराग्राफ चेंज। पत्थर की गली में लेखिका की दृष्टि निम्न वर्गीय परिवार की समस्याओं पर है। जेबा चूड़ियां बेचने वाली है। उसके दादा उसे समय पूछने के लिए बाहर भेजते हैं जिससे कि उसका बलात्कार होता है। मेहरुन्निसा परवेज की दृष्टि ऐसी स्त्री पर गई और उन्होंने पत्थर की गली की रचना अपने दृष्टिकोण को उजागर करने के लिए की। पैराग्राफ चेन। इस प्रकार स्त्री रचनाकारों ने प्रेम, सेक्स और विवाह के भिन्न भिन्न स्तर को स्पष्ट करते हुए नारी चरित्र का मूल्यांकन किया है। प्रेम और सेक्स का संबंध व्यक्ति और प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जबकि विवाह का सामाजिक संस्थाबद्धता से है। वैसे आधुनिक नारी नैतिकता अनैतिकता जैसे मानदंड में विश्वास नहीं करती और वह सेक्स तथा प्रेम के लिए सामाजिक नियंत्रणों की अवहेलना करने से भी नहीं चूकती। लेखिकाओं ने विवाहेतर प्रेम और काम संबंधों में स्वतंत्रता को लिया है। यह आकांक्षा संस्थाबद्धता को तोड़ती है। नारी की चेतना भी अब आदर्शों को खोखले आवरण में बांधने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में प्रेम और नैतिकता एक दूसरे के विरोध में दिखाई देती है। आधुनिक लेखिकाओं के साहित्य में पूर्व नैतिक मूल्यों का खुलकर विरोध हुआ है। वे मानती हैं कि प्रेम और सेक्स संबंधों की स्वीकृति अस्वीकृति का निर्णय व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में है। इसी मनोभूमि के आधार पर आधुनिक लेखिकाओं ने अपनी उपन्यास की रचना के लिए सृजित नारी चरित्रों को ही चुना है। समाप्त।